نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفالفة مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. ذکر کے فضائل میں آتا ہے کہ ذکر کی جو مجالس ہیں یہ فرشتوں کی مجالس ہیں. اور یہ مضمون تو ہم متعدد بار کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ بھائی جب اللہ کے ذکر کی مجلس قائم ہوتی ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو آسمان سے فرشتوں کی براتیں اترتی ہیں، ٹولیاں اترتی ہیں. مختلف جگہ پر مختلف مضمون ہے، اس قدر ملائک اور فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان دنیا تک جو ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی یہاں انسان فرشتوں کو نہ دیکھ کے، زمین آسمان میں چپا بھی خالی نہیں ہوتا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جو بات قرآن حدیث سے ہم تک پہنچے اس پہ ہمارا پکا یقین ہوتا ہے کہ بھئی ایسی ہو رہا ہے. تو کتنی بابرکت مجلس ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے ٹوٹے پوٹے جیسے بھی ہیں کرم فرما کر ہمیں ایسی مجلس کا موقع عطا فرما دیا کہ جو جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کی مجلس ہے، فرشتوں سے اس کا تعلق ہے. ہاں، اگلا جو اس میں مضمون ہے بڑا دلچسپ بھی ہے کہ ہر شخص، ہر آدمی اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی مناسبت رکھتا ہو. نہیں سمجھے؟ ہر آدمی اسی کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی مناسبت ہوئے، یعنی میوچل انڈرسٹینڈ، سمجھ لیں، جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، طبیعت ملتی ہو، مزاج ملتی ہو یا ویسا ہو، اسی کو پسند کرتا ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے بات ہی بڑی سوچنے والی بات ہے، اور اس اشکال کو صاف کیا جائے گی. کیا مطلب؟ پہلے تو یہ کہا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، نیچے آتے ہیں. کس مجلس میں آتے ہیں؟ جہاں ہم جیسے ڈبے گنہگار بیٹھے ہوتے ہیں. کتنے کتنے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر کے ہم آئے ہوئے باہر، ہمارا کیا مقابلہ فرشتوں سے؟ فرشتوں تو وہ قوم ہے کہ گناہ کرتی ہی نہیں ہے، گناہوں سے پاک قوم ہے. تو ہماری ان کسی کا کیا نسبت ہوئی؟ شکال آتا ہے نا. ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ہمارے میں، ادھر یہ ہے کہ بھائی اسی سے آدمی مل سکتا ہے جس سے اس کی مناسبت ہو. ہماری ان سے کیا نسبت ہے؟ وہ فرشتے پاک صاحب، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، سجود میں پڑھنے والے، اللہ کے مقرب، یہی نا فرشتے. ہم دنیا کے اندر گناہ بھی کرتے ہیں، فضول باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے صبح شام تک، ایسی ہے نا. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ وہ مناسبت جس سے ہوتی ہے وہ اسی سے ملتا ہے؟ تو ہماری تو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے. یہ نا اشکال ہوا. تو اس کو سوچتے ہیں الحمدللہ. یہاں بہت اچھا ایک الحمدللہ ذکر کرنے والوں کو درجہ دیا گیا ہے، اور بڑی خوبصورت پڑھائی کے اندر تعریف کی گئی ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں کی. کیسے؟ جب یہ فرمایا کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور بیٹھتی کس کے ساتھ ہیں؟ میرے اور آپ کے ساتھ. ہم ہی ہیں نا، यहाँ पे अल्लाह के फजल से हमारे पास ही आएंगे। कितने बड़े आसमानों का कोई हो मुकाम, जो कुछ भी करते हो आप भी ज्यादा बैठोगे ना गुनाहगारों के साथ, तो एक तरफ गुनाहगार एक तरफ नूरानी की मखलूक, नस्बत तो नहीं हुई, नहीं हुई ना, नस्बत तो नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती, और बैठे हमारे साथ। तो उधर ये कहा जा रहा है कि आदमी उसी से मिलता है जिसकी उसके साथ नस्बत रखता हो, तो ये कैसी बात है? सुनने अब जरा, हकीकत तो ये है कि हमारी उनके साथ कोई नस्बत नहीं है, मुनासबत भी नहीं है। तो इस से बात जो पता चलती है, बड़ी अजीम बात यह है कि जिस वक्त बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, पता ये चलता है कि उनकी भी जो सारी हैयत है वो मलकूत वाली हो जाती है, वो स्टेटस पे चले जाते हैं जो कि फरिश्तों के स्टेटस है। अल्लाह सुबहाना ताला अपने जिक्र के तोफैल और बरकत से उन इंसानों को, बेशक कितने गुनाहगार हों, इतना पाक और साफ और शफाफ कर देते हैं कि फरिश्ते उनसे मिलने में फख्र महसूस करने लगते हैं। अच्छी बात, कितनी जबरदस्त बात है कि इतने उन मिक्स होने पता नहीं चलता, वो कहते हैं बिल्कुल हमारी तरह है, तो बिल्कुल पाक साफ है, नूर निकल रहे हैं उनमें से। अल्लाह का करम और रहमत देखें कि जिक्र की बरकत से आए कैसे थे, क्या हाल था हमारा, और मस्जिद में नीयत की अल्लाह के जिक्र की तो इंसान की हैयतें तब्दील हो जाती है, बिल्कुल नूरानी हो जाता है, जिससे फरिश्ते मलाइक पिस्ता हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या क्या अल्लाह की मजलिस, ये जिक्र की मजलिस कितनी बुलंद है इंसान की। अब तक जब तक इंसान बैठेगा तो उसकी और फरिश्तों के हालात जो है बिल्कुल सेम ही होंगे अल्लाह के फजल से, कितना बुलंद मुकाम हो जाता है। तो दूसरी चीज एक और है इसमें जो बहुत खूबसूरत चीज है, वो ये कि भाई जब ऐसी मजलिस हो जिसमें मलाइक बैठते हो, खुद इंसान जो है वो खुद भी उसी सिफ्त में चला जाता है, इतना पाक साफ हो जाता है, तो फिर मुझे आप बताएं वहाँ दुआएं कबूल नहीं होंगी, वहाँ हमारी मुश्किलें दूर नहीं होंगी, हमारी परेशानी दूर नहीं होंगी, हमारे रिज़्क में बरकत नहीं होगी, हमारे गुनाहें ख़त्म नहीं होंगे, हमारे जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा, तो और किस पर जिसमें इंसान से राज़ी होता है। सुभान अल्लाह, तो ये तो बिल्कुल गारंटेड बात होगी कि भाई इस मजलिस में आके इंशाल्लाह बंदा जो दुआएं मांगे, जो मुश्किलात अपने पेश करे अल्लाह के सामने, और जिस तरह भी रोए, जो कुछ भी जाए, जिस जगह भी इंसान को अल्लाह से फरियादें करनी है, मुश्किलात पेश करनी है बीमारियों के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं तो मजलिस है इतनी नूरानी, फरिश्ते भी तुम्हारे साथ और तुम भी फरिश्ते बन चुके हो, तो मांगो, दरवाजे खोले हैं तुम्हारी रहमतों के, अल्लाह ताला पार करा देता है। हदीस का जो है ये कि भाई जिस तरह ये जिक्र की मजलिस नूरानी होती है, इसको कहा गया है कि जिक्र की मजलिसें क्या हैं, फरिश्तों की मजलिस हैं, इसी तरह ये कहा गया कि लकवियात फजूलियात और जो गलत किस्म की मजलिसें हैं, लकवियात वाली फजूलियात वाली बेहुदा उल्टी सीधी, फरमाएं ये मजलिसें फिर शैतान की मजलिस हैं। जिस तरह जिक्र की मजलिसें कौन सी हैं, फरिश्तों की मजलिस हैं, ये लगवियात वाली फजूलियात वाली बेकार मजालिस हैं, वो क्या हैं, शैतान की मजलिस हैं। अब इसमें क्यों, वहाँ जो जिक्र की मजलिस से तो कौन आया, फरिश्तों की मजलिस से कौन उतरा, फरिश्ते, तो जब ये शैतान की मजलिस हुई तो यहाँ पर कौन उतरेगा, शयातीन जिन भलाएँ मुसीबतें सब उस मजलिस में नाजिल होंगी, क्योंकि जिसकी जो मुनासिबत होती है वो उसी से मिलता है, तो उसमें दो चीज़ें वही हो गई जो उस मजलिस में हुई थी कि शयातीन जिन बुराइयाँ बदकारियाँ जो कुछ भी होगा उस मजलिस में होंगी, इसलिए कि वो मजलिस शैतानी मजलिस है, शैतान उतरते हैं आप, शैतान आते हैं, तो पता ये चला कि जिस तरह जिक्र की मजलिस में बैठने वाले फरिश्ते बन गए थे, तो ऐसी मजलिस में बैठने वाले ऐसी हरकतें करने वाले क्या बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप तो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, अभी देखा ये हर जगह पे आप दो मजलिस से मिलेंगी हर वक्त जिंदगी के अंदर, आप याद रखें तीसरी मजलिस है ही नहीं, या शैतान की मजलिस होगी या अल्लाह के जिक्र की मजलिस होगी, दो तीसरी मजलिस हो ही नहीं सकती, बीच वाला रास्ता कोई है ही नहीं। देख रहे हैं आप, वहां शैतान की मजलिस होगी, वहां क्या होगा, उस मजलिस में जैसे जिक्र की मजलिस की नूरानी इतनी हो गई, अल्लाह कहते हैं मैं जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, मुझसे दुआएं मांगो, बरकात मांगो, सब दूंगा। इसी तरह इस मजलिस के अंदर जो शैतानी मजलिस हैं, लगवियात वाली फजूल, वहां क्या है, शैतान होता है, तो वहां शैतान का काम चलता है, बलाएं मुसीबतें परेशानी है, बीमारी है, हर चीज आपको उसमें उस मजलिस के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी, मंजिल सुगंधी है। तो फिर आगे फरमाया अल्लाह अकबर कि बंदे को अख्तियार है, सुभान अल्लाह, क्या कहा है कि बंदे को अख्तियार है जो चाहे मजलिस अख्तियार कर ले। ये हमने अल्लाह तआला ने अख्तियार दे दिया, मंजिल दोनों खुली हुई, मैंने खोल दिए दो दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए। अब यही है कि तुम्हारी मर्जी है, चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, या तो अपने दिन को अपनी रातों को उन शैतान के साथ गुजार दो, लेकिन ये तसव्वुर भी ना करो कि मजालिस शैतान की हो और वहां से बरकत तसव्वुर करें, रहमतें तसव्वुर करें और मुश्किलात को दूर तसव्वुर करें, या ऑन द होल ऑन द अदर साइड बैठ के शिकायत करें कि जी हमारे तो घर में बड़ी मुसीबतें आई हैं, बड़ी परेशानी आई हैं, हमारे बच्चे नाफरमान हो गए हैं, हमारे घर में तो बरकतें नहीं हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो फला भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हज़ारों बातें। और फिर उसके शैतान से दूसरा काम जो अल्लाह ताला कहता है सज़ा के तौर पर, फिर उनको ऐसे लोगों के पास धकेल देता है जो होते ही शैतान, वो होते ही शैतान है, हम तेरा इलाज कर देते हैं, हम तो सही कर देंगे, हम तो वहाँ कर देंगे, उनकी ये सज़ा दुनिया के अंदर मिल जाती है। साफ क्लियर अल्लाह पाक ने कह दिया कि अब तुम्हें अख्तियार है, मैंने तो बता दी सारी बात, या तो अल्लाह की मस्जिद की तरफ रुख कर लो अपना, और जहां भी मिलती है, सुबह मिलती है, शाम को मिलती है, दोपहर को मिलती है, जिस वक्त भी बैठ जाओगे तो तुम फरिश्तों वाले इंसान बन जाओगे। 10 मिनट के लिए बैठोगे तो वो सिफात तुम्हारे हो जाएंगे, 15 मिनट के लिए बैठोगे तो वो सिफात तुम्हारे हो जाएंगे, खुद बैठ के अपना जिक्र करो तब भी ये सिफात तुम में आ जाएंगे। तो अब भी इसके बावजूद भी भाई हम जिक्र की तरफ ना आए, जिक्र से रगबत ना करें, नोटिफिकेशन भी जाए, लोगों को पता भी चले, सब जानते हैं भाई यहाँ जिक्र की मजलिस हो रही है आज अलफला मस्जिद में, किसको नहीं पता, पता ही नहीं लोगों को, लेकिन उसके मुकाबले अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हें अब अख्तियार है, अख्तियार जो चाहे तुम करो, मैंने तुम्हें बता दिया, या शैतान बन जाओ रोते रहो, लेकिन ये ना समझना कि उस गंदी मस्जिद में जाकर तुम्हें अल्लाह की रहमत वहाँ मिलेगी, या तुम्हारे काम सीधे हो जाएंगे, या तुम्हारी बरकतें हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर जिक्र की मस्जिद में जाते हो, अल्लाह पाक कहता है कि इंशाल्लाह दिनों के दर तुम्हारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, परेशानी दूर हो जाएंगी, उसके साथ साथ दीन आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह के अहकामत से मोहब्बत हो जाएगी, नबी की सुन्नत से मोहब्बत हो जाएगी, दीन पे चलना हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र करें, हमें जिक्र की अल्लाह ने तौफीक तो दी है, लेकिन इस पर पाबंदी इख्तियार करें, और अल्लाह को जब पता चले अल्लाह का जिक्र हो रहा है, पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पहुँचें, अपने लिए, मेरे लिए नहीं आना, आपने किसी के लिए नहीं आना, इतनी बड़े फजाइल के लिए आप क्यों जाया करता है, आदमी सोचिए जरा क्यों जाया करता है कोई एक आध घंटा काम बैठ के, इतनी बड़ी चीज़ें नेमतें मिल रही हमें, और इसमें तो ऐसा करना चाहिए इंसान को कि हम तो परेशानियों में मुसीबतों में घिरे हुए हैं, अपने बाकायदा सोच के आए कि आज इस मजलिस में हमने अल्लाह की हुजूरी अपनी गुज़ारिशात पेश करनी है। जिक्र के दौरान दुआ मांग सकते हैं, जिक्र के दौरान दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें तो खालिस इस नीयत से आए इस मजलिस में कि तुमने खुद कहा है कि बड़ी बाबरकत मजलिस है, और ये मजलिस सिर्फ इस अलफलाम ही नहीं है, अल्लाह के फजल से बड़ा काम करता है, ये काम करता है जहाँ भी मर्द औरतें पूरी दुनिया में हमारे इस मजलिस में शामिल होंगी, वो इसी तरह सवाब उनको भी मिल रहा होगा, जिक्र की मजलिस है, वहाँ भी फरिश्ते उतर रहे होंगे, बच्चों के लिए भी, औरतों के लिए भी, और जो इंसान नहीं आ सके उनके लिए भी, जिनके फासले दूर हैं, हमसे दूर हैं बेचारे, लेकिन वजह क्या है कि अल्लाह दिल देखते हैं, उनको जिक्र से मोहब्बत है, तो वो अपने वक्तों को निकाल के, उनको पता है आज अलफला मस्जिद में हमने नोटिफिकेशन पढ़ा है, वहाँ जिक्र हो रहा है, और चांद ऐसा सिस्टम बन गया है, वो खोल के बैठ जाते हैं और जिक्र में शामिल हो जाते हैं। ये नहीं कि हमें मिल रही, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जो इंसान अल्लाह के जिक्र की मस्जिद में शामिल हो जाता है, अल्लाह उसको नवाज देते हैं। तो एक काम और किया करें आप कि अपने घरों में बरकत डालने के लिए, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे क्या फ़ायदा है जो आप समझेंगे मैं अपने फ़ायदे की बातें कर रहा हूँ, मेरी मशहूरी हो रही है, मैं मुझे तो पता ही आपको मेरी मशहूरी का तो मुझे शौक भी नहीं किसी के, मेरी क्या मशहूरी होनी, मेरा क्या दर्द इसमें, सर ख्वाब के पड़ लग जाएंगे भाई मेरे इतने मुरीद हैं, ये कुछ नहीं, वजह ही है नबी पर उम्मत को फ़ायदा हो, उम्मत को फ़ायदा हो, जब अल्लाह के नबी ने ऐसे पैगाम हमें दिए हैं, जब पैगाम मुझे पता चल जाए तो मैं क्यों ना लोगों को बताऊं, ये बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है, इसमें क्यों कंजूसी की जाए आदमी करे इसमें। तो एक काम और क्या करें आप, ये काम कि भाई कम से कम, मैं नहीं जानता आपके घरों के क्या हालात है, कौन सी मजलिस चल रही उधर, पता नहीं अब दो ही मजलिस चलती हैं घरों में, कौन सी मजलिसें हमारी चल रही हैं इस वक्त, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आलम तो वही है, सब कुछ जानता है कि हमारे घर की हालत क्या है। हमें तो धकेल दिया, हम आ गए यहाँ, लेकिन पीछे छोड़ के जो है उनका क्या होगा? उनसे हमें हमदर्दी नहीं है, अपनी बीवी बच्चों से हमदर्दी नहीं है? वो बेचारी रोटी मंगाती है, खाना भी बनाती है, बच्चे भी हमारे हैं, खून भी हमारा है, उनसे भी तो हमदर्दी होना चाहिए ना। अगर हम आ गए तो एक काम जरूर करके आया करें कि भाई ये मिलता है ना जो रिसीवर वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह रिसीवर मिलता है, ये या इसके जो है सिस्टम, मुझे तो नहीं पता क्या सिस्टम क्या नहीं, तो उसको ज़रूर वहाँ पर जारी करके आया करें और कह के आया करें कि भाई एक दफ़ा ज़रूर बैठ के देखो। मैंने देखा है बाज़ दफ़ा बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा बैठने से उनकी दुनिया चेंज हो गई, घर तब्दील हो गए। बरकत तो किस चीज़ की? अल्लाह से वादा जो अल्लाह ने किया है, उस मजलिस को जहां भी होगी मैं क्या बना दूंगा? फरिश्तों की मजलिस बना दूंगा। ये काम इस पे देखें, जरूर काम करें, इसमें नहीं रहेंगे हम गुनाहगार हैं, मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या है, कह के आए कि भाई थोड़ी देर जरूर सुनना, मैं बहुत मशगूल हूँ, प्यार मोहब्बत समझा, डांट पाट नहीं, खुदा के वास्ते जरूर बैठना, हमारे घर में बरकत आएंगी, देखो ये परेशानी है, ये मुसीबत है, चलो किसी को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा, स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, बच्चों के प्रॉब्लम करते, तो बैठ के देख इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा तेरा। हाँ इस तरह समझाए उनको, देखते जो मसला मुझे पता है, अब मैं तेरा बाप हूँ, है ना तेरा मसाइल कितने आए, तुझे नौकरी नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा, या तू पास नहीं हो रहा, या तू आगे बढ़ ही नहीं रहा, होते हैं मसाइल जिंदगी में। कहता तू एक दो जिक्र में बैठ के देख और जिक्र में दुआ मांग के देख, देख फिर अल्लाह ताला किस तरह कबूल करता है, और इंशाल्लाह होती है, अल्लाह का वादा बिल्कुल पक्का होता है। तो ये भी करके आना चाहिए कि हम अपने घरों में इंशाल्लाह लोगों को बताएं, और इसको भी तुम्हारे फायदे की चीज़ है। अल्लाह ने कुदरती जारी कर दिया, जिस तरह जारी करता है उस तरह बंद भी कर देता है, हो जाता है ना ऐसा, पता नहीं कब तक चले कब बंद हो जाए, हमें क्या पता इसका। इस तरह ऐसे ही है कि बहुत बड़ा माशाल्लाह दरिया बह रहा हो हमारे घर के आगे से, हम जाते हैं पानी लेके पी लें, पानी लेके पी लें, अचानक वो जो दरिया खुश्क हो जाए, जब दरिया खुश्क हो फिर पता, ओहो मारे गए पानी कहाँ से पियेंगे, बस्ती में मुसीबत पड़ती है नहीं पड़ती, यार यहाँ अच्छा खासा दरिया बहता था पानी ले लेते थे, अब ये है कि दरिया ख़त्म हो गया, अब किधर जाएंगे, दूर सफ़र करें, पता ही तो बहुत दूर है दरिया, तो फिर यहाँ दरिया कहाँ मिलते हैं? ये तो अल्लाह की रहमतें होती हैं कि ऐसी चीज़ें अल्लाह पाक जारी फरमा देते हैं। जिक्र जो है बहुत बुलंद चीज़ है अल्लाह, बहुत, इसके तो फजाइल 50 साल से बयान कर रहा हूँ, 50 साल मुझे हो गया, आप भी सुन रहे होंगे मुझे, तो 50 साल से ख़त्म होने को नहीं आते, खुदा की किस्म खत्म होने को नहीं आते, यानी आदमी थक जाता है बताते बताते, सुबहान अल्लाह, लेकिन अल्लाह के जिक्र की बरकतें खत्म नहीं होती बताने से, ये हकीकत बता रहा हूं, देख रहे हैं। तो आप करने वालों का क्या हाल हो गए? अभी थोड़ा इंतजार कर लें, फूंक तो निकलनी हमारी, ये नहीं निकलनी निकलनी ना फूंक, थोड़ा इंतजार कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह फरिश्ते आपको लेने आएंगे, कैसी आपकी बरातें निकलेंगी, किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हजूम लगेगा कि ये वो शख्स आ रहा है, आज मामूली शख्स नहीं आ रहा, फरिश्ते कहेंगे ये तो वो शख्स है जो हमें जमीन पे बुलाता था, ये तो वो शख्स है जो हमें जमीन पे बुलाता था, आज हम भी इसको एक ऐसे तरीके से लेके जाएंगे कि सारे आसमान के फरिश्ते देखेंगे कौन चीज आ गई। ये वादें हैं अल्लाह ताला की, हिम्मत करें, थोड़ा वक्त क्यों जाया करते हैं, समझे ना, ये दो दो चार पाँच पाँच छः जो है ना, इससे कुछ फायदा नहीं होगा हमें, फायदा किस चीज़ से होगा? अल्लाह कैसे करते हैं, तो इस पर कुछ कुर्बानी देनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, किसके लिए कर रहे हैं आप? अपने लिए कर रहे हैं, हिम्मत करके इस पर जारी रखें जिक्र को, उस पर मेहनत से किया भी करें और खुद भी करें, घर वालों को भी शौक पैदा करें, और ख़ासतौर पर ये सिस्टम जारी हो गया है, इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं और ख़ुद भी इससे फ़ायदा